नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करेंगे।
जी,
उद्बोधन का नाम है हमारा कुटुंब तब और अब। इसमें पूज्य गुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक समुदाय, जिसे वो कुटुंब कहते थे, उसके विकास और सदस्यों से उनकी बदलती अपेक्षाओं पर रोशनी डाली है।
बिल्कुल, ये उद्बोधन दिखाता है कि कैसे पूज्य गुरुदेव का वो आध्यात्मिक परिवार, मतलब उनका कुटुंब, समय के साथ आप कह सकते हैं परिपक्व हुआ।
अच्छा,
शुरू में सदस्य शायद बच्चों जैसे थे,
आशीर्वाद चाहिए, चमत्कार चाहिए, जैसे बच्चे टॉफी मांगते हैं।
बिल्कुल,
हाँ हाँ।
लेकिन जैसे जैसे कुटुंब बढ़ा, गुरुदेव की उम्मीदें भी बदली। वो चाहते थे सदस्य अब सिर्फ लेने वाले न रहें, बल्कि देने वाले बने, योगदान करें।
तो चलिए इसी विचार यात्रा को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ये बदलाव क्यों इतना जरूरी था और आज इसका क्या महत्व है।
देखिए, शुरुआती दौर में जैसा पूज्य गुरुदेव बताते हैं
जी,
उनके पास जो साधक आते थे उनकी अपेक्षाएं थोड़ी बाल सुलभ थी। उन्हें लगता था गुरुजी कोई चमत्कार कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे, कोई बीमारी है तो ठीक कर देंगे, मतलब भौतिक लाभ की इच्छा,
जैसे बच्चे पिता से गुब्बारे मांगते हैं वैला कुछ।
बिल्कुल भाई, टॉफी, गुब्बारे। और सच कहें तो पूज्य गुरुदेव ने उस वक्त एक तरह से इन इच्छाओं को थोड़ा पूरा करके ही समुदाय की नींव रखी थी।
ये तो हुआ आध्यात्मिक बचपन, लेकिन फिर ये परिपक्वता कैसे आई, ये अपेक्षाएं बदली कैसे?
हाँ, तो समय के साथ जैसे जैसे सदस्य पुराने हुए, समुदाय स्थिर हुआ, तो गुरुदेव ने महसूस किया कि भाई अब केवल लेने का वक्त नहीं है।
अच्छा,
अब देने का वक्त है। जैसे बच्चा जब जवान होता है, कमाने लगता है, तो माँ बाप का सहारा बनता है ना।
जी बिल्कुल,
उनके लिए चश्मा लाना, उनकी जरूरतें देखना, वैसे ही अब सदस्यों को मिशन के लिए, समाज के लिए अपना समय, अपना श्रम, त्याग, समर्पण देना होगा। ये एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी की मांग थी।
ये सुनकर लगता है जैसे एक यात्रा थी आध्यात्मिक, बचपन से जवानी की ओर, जहां जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पर इसी समय पूज्य गुरुदेव ने तत्कालीन समाज की काफी कठोर आलोचना भी की है ना?
हाँ बिल्कुल की है। वो समाज में बढ़ते स्वार्थ, खासकर परिवारों में बढ़ते शोषण और घटती करुणा से बहुत बहुत चिंतित थे।
शोषण परिवारों के अंदर?
जी, खासकर स्त्री का शोषण, बच्चों के प्रति लापरवाही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आज का शोषण तो रावण के जमाने से भी बदतर है।
ऐसा कहा?
हाँ, बोले रावण तो एक बार में मारकर खत्म कर देता था, आज का समाज तो रुला रुला कर, तिल तिल कर मारता है। ये दिखाता है कि नैतिक पतन कितना ज्यादा हो गया था।
ये तुलना तो बहुत गंभीर है। वो धर्मशाला वाला उदाहरण भी इसी संदर्भ में था कि इंसान की कीमत गिर गई है।
वही वही, उन्होंने कहा कि धर्मशाला में शायद बिस्तर वाले को जगह मिल जाए, पर बिना बिस्तर वाले को ना मिले, मतलब आदमी की कीमत उसके पास जो सामान है उससे नहीं कम हो गई है।
बाप रे,
लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, डरते हैं। और विडंबना देखिए, पैसा बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन चरित्र, ईमानदारी, आपसी स्नेह, वो सब घट रहा है।
तो जीवन कैसा हो गया फिर?
पूज्य गुरुदेव ने तो कहा प्रेत पिशाच जैसा जीवन, जहां अपनापन नहीं, बस एक खोखलापन है। मानसिक अशांति, बीमारियां, घरों में कलह, ये सब उसी का नतीजा है।
तो इतनी निराशाजनक तस्वीर के बीच पूज्य गुरुदेव ने कोई रास्ता भी सुझाया, निकलने का कोई उपाय, जिसे उन्होंने युग की पुकार कहा?
हाँ बिल्कुल सुझाया। उन्होंने कहा यही समय की मांग है, युग की पुकार है कि हर व्यक्ति अपने अंदर के जो दैवीय गुण हैं, त्याग, परोपकार, परमार्थ, उन्हें जगाएं और समाज के लिए सक्रिय हो, योगदान दे। और इसके लिए उन्होंने ये भी साफ किया कि मुख्य जरूरत पैसे की नहीं है।
अच्छा, पैसे की नहीं?
नहीं, जरूरत है मन की, हृदय की और श्रम के समर्पण की, असली चीज ये है।
और इस समर्पण को, मतलब जमीन पर उतारने के लिए, उन्होंने कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए। जैसे आपने कहा योगदान करना है, तो कैसे?
हाँ, कई व्यवहारिक कदम बताए। पहला तो विचारधारा का प्रसार, उनकी जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, उन्हें खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाएं।
ज्ञान का प्रसार?
हाँ, ज्ञान का प्रसार, जैसे झोला पुस्तकालय चलाएं या चलते फिरते पुस्तकालय बनाएं। इसमें उन्होंने सुल्तानपुर के एक वकील साहब लखपत राय जी का उदाहरण दिया था।
हाँ, वो बड़ा प्रेरक उदाहरण था, अकेले ही उन्होंने पूरे शहर में विचारों को फैला दिया।
बिल्कुल, और फिर व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने को कहा, एकला चलो रे की भावना से। दीवारों पर अच्छे वाक्य लिखें, तीर्थयात्राएं करें, पदयात्राएं करें, स्लाइड प्रोजेक्टर से विचारों का प्रसार करें।
अच्छा, व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ संगठित प्रयास भी जरूरी बताए होंगे।
हाँ, संगठित प्रयासों पर भी बल दिया, छोटी छोटी टोलियां बनाने को कहा, जन्मदिन जैसे मौकों को सार्थक बनाने की बात कही, सत्संग करें, अच्छे काम करें, और जो गायत्री परिवार की शाखाएं हैं उनका वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन वो जरूर मनाएं।
उससे क्या होगा?
उससे सामूहिक ऊर्जा बनती है, प्रेरणा मिलती है, लोग जुड़े रहते हैं।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद आ रही है वो थी सच्चे प्रतिनिधि की जरूरत। आपने शुरू में कहा था ना सिर्फ लेने वाले नहीं देने वाले, तो प्रतिनिधि कैसा हो?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूज्य गुरुदेव को सिर्फ बोलने वाले वक्ता नहीं चाहिए थे,
तो फिर
उन्हें ऐसे प्रतिनिधि चाहिए थे जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनकी जीवन शैली वो गुरुदेव के आदर्शों का आयना हो।
मतलब जिनका जीवन ही संदेश हो।
एकदम सही। प्रतिनिधि बनना अपने आप में एक साधना है, एक योगाभ्यास है, इसमें आत्मनियंत्रण, चरित्र निर्माण ये सब आता है। वाणी से ज्यादा आचरण महत्वपूर्ण है, लोग देखकर सीखते हैं, सुनकर नहीं।
तो सार ये निकलता है कि पूज्य गुरुदेव का संदेश ये था कि आध्यात्मिकता सिर्फ आंख बंद करके बैठने या व्यक्तिगत लाभ पाने का नाम नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक परिपक्व जिम्मेदारी की ओर बढ़ना है, जहां हम समाज के लिए, मानवता की भलाई के लिए सक्रिय रूप से अपना समय, अपनी ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपना चरित्र समर्पित करें।
बिल्कुल यही बात है, और ये मैं सोचने पे मजबूर करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता आखिर है क्या? क्या ये बस अपने अंदर शांति ढूंढना है, या ये हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति, उसके दुख दर्द के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सेवाभावी बनने के लिए प्रेरित करती है? पूज्य गुरुदेव के अनुसार तो असली परीक्षा इसी सक्रिय योगदान में है, इसी चरित्र निर्माण में है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की जो चुनौतियां हैं उनके बीच हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ देखते रहते हैं, निष्क्रिय दर्शक बने रहते हैं, या फिर बदलाव लाने के लिए सक्रिय कर्ता बनने का साहस दिखाते हैं?
बहुत गहरा प्रश्न है ये सोचने के लिए।